स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 27 नवंबर और दिन है बुधवार। उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री।
ही जवाबदारी मी स्वीकारतो है, पण ही जवाबदारी स्वीकारत असताना
लेकिन बीजेपी से आखिर कहां हुई चूक?
जो एक छवि अमित शाह की बनी थी, जो बहुत बड़े चाणक्य हैं, रणनीतिकार हैं, फेल नहीं होते हैं, वो भी टूट गई वो छवि भी।
सबरीमला मंदिर में जाने की कोशिश करने वाली महिला पर हमला।
पुलिस ने कहा कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर अगर स्टे नहीं है तो।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विकास त्रिवेदी से। महाराष्ट्र में एक महीने से जारी सियासी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क स्टेडियम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना है। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को 3 दिसंबर तक विधायकों का समर्थन पत्र देने के लिए कहा है। अमरीकी संसद की न्यायिक कमेटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम को अगले 3 हफ्तों तक महाभियोग की सुनवाइयों में हिस्सा लेने के लिए कहा है। इस कमेटी के प्रमुख जेरॉल्ड नडलर ने व्हाइट हाउस से कहा कि रविवार तक ये जवाब दिया जाए कि क्या ट्रंप की लीगल टीम या खुद ट्रंप सुनवाई के लिए आ सकेंगे। ये कदम ट्रंप की उस शिकायत के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लीगल टीम पूछताछ के पहले चरण में हिस्सा नहीं ले पाई। इस निमंत्रण के बाद व्हाइट हाउस के और से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने अपनी ही खुफिया एजेंसी एनडीएस की आलोचना की है। एनडीएस ने सैकड़ों बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की खबर को सामने लाने वाले 2 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया था। घानी ने इन दोनों एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि 500 से ज्यादा लड़कों के साथ एक क्रिमिनल नेटवर्क ने उत्पीड़न किया था। माल्टा सरकार से 2 मंत्रियों और प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ ने 2017 में पत्रकार दफीनी करुआना गलीचा की हत्या की जांच से जुड़े मामले को लेकर इस्तीफा दिया है। मंगलवार को पुलिस ने प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के चीफ ऑफ स्टाफ कीथ स्कंबरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद पर्यटन मंत्री कोनार्ड मिज़ी और वित्त मंत्री क्रिस्टियान कार्डोना ने भी जाँच पूरी होने तक अपना पद छोड़ दिया है। दफीनी ने अपनी रिपोर्ट्स में माल्टा सरकार के पनामा पेपर्स से लिंक होने का दावा किया था। इन इस्तीफों के बाद संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मस्कट के खिलाफ नारे लगाए। टाइम्स ऑफ माल्टा के एडिटर इन चीफ हरमन ग्रेज ने बीबीसी से कहा कि पीएम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन अभूतपूर्व हैं।
जोसेफ मस्कट इज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। ही हैज
जोसेफ मस्कट एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वो कई चुनाव शानदार तरीके से जीते हैं। अपने समर्थकों के बीच वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, खासकर वलेता में जहां उनकी कार पर अंडे फेंके गए, ये माल्टा के लिहाज से काफ़ी अभूतपूर्व है। माल्टा एक ऐसा देश है जहां उस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं होते हैं। ये थे माल्टा के वरिष्ठ पत्रकार हरमन ग्रेज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल्बानिया में मंगलवार को आए भूकंप में कम 20 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 की रही। भूकंप का केंद्र अल्बानिया की राजधानी तिराना से 34 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहा। अल्बानिया के स्थानीय मीडिया के मुताबिक 600 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बचाव कार्य जारी है। कोलंबिया में सरकारी खर्च में कटौती को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में 18 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो जाने के बाद प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने सरकार से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेताओं ने सरकार से दंगारोधी पुलिस को भंग करने के लिए कहा है। राष्ट्रपति इवान डूक से मुलाकात के बाद इन नेताओं ने कहा कि डिलान क्रूज की मौत से देश स्तब्ध है। डिलान की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। प्रदर्शन कर रही यूनियन ने हफ्ते में दूसरी बार बुधवार को फिर से हड़ताल बुलाई है। प्रदर्शनकारी सरकार से अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल यूनियन वर्कर्स के प्रवक्ता इलियास फोनसेका ने कहा, डिलान की मौत से देश आक्रोश में है, लेकिन लोगों में सरकार को लेकर भी गुस्सा है। ये थे कोलंबिया में विरोध कर रहे यूनियन के प्रवक्ता के शब्द। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 27 तारीख और दिन है बुधवार। भारत में इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 6:34:44। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तकरीबन 80 घंटों तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद कल शाम उद्धव ठाकरे को आधिकारिक तौर पर महाअघाड़ी गठजोड़ यानी शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का नेता चुन लिया गया।
ही जबाबदारी मी स्वीकारतो आहे पण ही जबाबदारी स्वीकारत असताना मी एकटा नाही आहे मुख्यमंत्री म्हणून आपण सुद्धा सगळे जण आहात।
उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। नेता चुने जाने के बाद उन्होंने देर शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी। उद्धव ठाकरे कल यानी गुरुवार को शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण करेंगे। सीधे चलते हैं मुंबई मयूरेश के पास। मयूरेश, सबसे पहले ये बताएं कि शिवसेना का शिवाजी पार्क से ऐसा क्या खास रिश्ता है कि शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने वही जगह चुनी?
शिवाजी पार्क जिसे शिवसेना शिव तीर्थ कहती है, वो उसे शिवाजी पार्क कभी कहते नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ये है कि वहां पे शिवसेना की स्थापना हुई, दशहरे के दिन हुई करीब 53 साल पहले, और उसके बाद जब भी बाला साहब ठाकरे ने हमेशा वहीं पे सारी जो उनकी सभाएं हैं रैलीज हैं जिनको करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग हमेशा आते हैं और उसकी हमेशा चर्चा रही, तो इसके लिए उनका हर साल का दशहरा मेला हुआ, सारी जो आज तक की अहम सभाएं हैं बाला साहब ठाकरे की भूमिका है, तो इससे रिश्ता उनका हमेशा रहा है। शिवसेना शिवाजी पार्क दादर में आता है, दादर हमेशा शिवसेना का गढ़ रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने यही बताया था कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा तो शिवाजी पार्क से वो शपथ लेगा, तो वहीं पे इसीलिए ये जो कार्यक्रम है वो कल होने जा रहा है और वहीं पे उद्धव ठाकरे जो है वो शपथ लेंगे।
और आज क्या कार्रवाई होगी? जो सारे विधायक चुन कर आए हैं उनको गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई जाएगी?
जी, वैसे आज फ्लोर टेस्ट होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह वो बताया भी था, लेकिन अब तो सरकार रही नहीं इसलिए फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने उनके अधिकार में ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया है, क्योंकि अब तक विधायकों को शपथ दे दी नहीं गई है, असेंबली गठित नहीं हुई है, और इसी वजह से वहां पे आज सुबह 8 बजे से सारे विधायकों को शपथ देना शुरू होगा, असेंबली गठित होगी प्रोटेम स्पीकर के नाम पर। कालिदास कोलमकर जो बीजेपी के विधायक हैं उनको बैठाया गया है 2 दिन के लिए, और जैसे ही कल सरकार स्थापन होगी फिर से असेंबली सेशन बुलाया जाएगा और विश्वास दर्शक ठहराव उसके बाद आ जाएगा।
जी मयूरेश, बहुत ही संक्षेप में चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, अजीत पवार के इस्तीफे के बाद से अब तक वो कहाँ है, कोई खबर? क्या वो आज आएंगे शपथ लेंगे कुछ कह रहे हैं, कोई भी ऐसी खबर?
जी, उनको आज आना ही पड़ेगा असेंबली में, क्योंकि विधायक की शपथ जो है वो तो उन्हें लेनी ही पड़ेगी असेंबली के मेंबर पर। वो कल दिन भर दिखे नहीं, लेकिन कल देर रात करीब 10:30 के बाद जब उद्धव ठाकरे के नाम की घोषणा कर शरद पवार वापस उनके घर लौटे, तो अजीत पवार उनके घर सिल्वर ओक को वहां पे उनको मिलने आए थे, तो शरद पवार अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच एक बैठक हुई है, तो वो तो सामने तो आ गए, आज भी शपथ लेंगे, लेकिन अजीत पवार आगे क्या करेंगे अब तक उसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं हुई है।
जी, बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फडणवीस का इस्तीफा भी हो गया और अब उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि बीजेपी या चाणक्य कहे जाने वाले अध्यक्ष उनके अमित शाह से आखिर चूक कहां हो गई। हमारी सहयोगी मानसी दास ने भी यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से।
बीजेपी की रणनीतिक रूप से ये सबसे बड़ी गलती है। ये बात सही है कि जनादेश बीजेपी शिवसेना को मिला था और जब शिवसेना अलग हो गई और बीजेपी ने अपनी ओर से कोई मूव नहीं किया, कुछ नहीं कहा, जाके गवर्नर से कह दिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो एक सिंपैथी पूरे देश में और खासतौर से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए थी कि बड़ा डिग्निफाइड जो है उसका कंडक्ट रहा है। लेकिन ये जो किया अजीत पवार के साथ मिलकर, उसने वो सहानुभूति भी खो दी है, प्रतिष्ठा भी खो दी है, और ये जो एक छवि अमित शाह की बनी थी, जो बहुत बड़े चाणक्य हैं, रणनीतिकार हैं, और फेल नहीं होते हैं, वो भी टूट गई वो छवि भी। तो बीजेपी को वो जो कहते हैं ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, वो हाल है बीजेपी का। उसको हासिल कुछ नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ।
चूक कहाँ हुई बीजेपी से?
पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें हाल की, तो पहली गलती बीजेपी से हुई जब विधानसभा चुनाव के दौरान शरद पवार के खिलाफ ईडी का नोटिस गया। शरद पवार और एनसीपी ऐसी पार्टी थी जो महाराष्ट्र में एक बफर की तरह काम कर रही थी, शिवसेना का जब भी दबाव हो तो एनसीपी मदद के लिए बीजेपी के आ जाती थी। 2014 में भी ट्रस्ट वोट में एनसीपी ने बेल आउट किया था बीजेपी को, वो पुल बीजेपी ने जला दिया चुनाव के दौरान। दूसरी गलती हुई कि एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसको 5 साल तक भ्रष्टाचारी बताकर, उसके खिलाफ FIR करके, जांच शुरू करा के ये बताते रहे कि इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है, उसकी बात पर भरोसा किया और ऐसी चिट्ठी पर भरोसा किया जो एक तरह से चोरी करके लाए थे। बीजेपी ये असेसमेंट करने में नाकाम रही कि अजीत पवार के साथ कितने लोग होंगे। तीसरी जो गलती थी या वो शरद पवार अजीत पवार के रिश्तों की, एक परिवार के लोग,
ये आकलन लगा लिया गया था कि ये परिवार टूट जाएगा।
हाँ, टूट जाएगा, और ये अंदाजा नहीं लगाया कि किस तरह से एक भावनात्मक जो है जुड़ाव होता है परिवार का, और वो बड़ा मानसिक दबाव डालता है कोई भी परिवार से अलग होना चाहे तो। चौथी गलती बीजेपी से हुई कि शरद पवार की ताकत को उन्होंने कम आंका, और ये देखने के बाद कि विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ ईडी का नोटिस आने के बाद जिस तरह से उन्होंने पलट कर वार किया, उसके बाद बीजेपी को कम से कम 15-20 सीटों का नुकसान हुआ। तो शरद पवार महाराष्ट्र में, खासतौर से मराठा राजनीति की बात करें, तो अब भी अनडिस्प्यूटेड लीडर है। पांचवी गलती की प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व किया, राष्ट्रपति को इन्वॉल्व किया। अगर ये काम सामान्य तरीके से होता, कैबिनेट की बैठक होती, उसमें राष्ट्रपति शासन वापस लेने का फैसला होता, राष्ट्रपति शासन वापस होता, शपथ होती, तब शायद उतनी बदनामी पार्टी की ना होती। बीजेपी ने जो छठी गलती कहे, इन तीनों पार्टियों में जो मतभेद थे उनको खत्म करने का, अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि सारे मतभेद अपने भूल जाएं और एक हो जाएं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब महाराष्ट्र से थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, केरल। केरल के सबरीमाला मंदिर में स्वामी अयप्पा की पूजा करने की दूसरी कोशिश करने वाली महिला बिंदु अमिनी पर कल चिली स्प्रे से हमला किया गया। उनके साथ महाराष्ट्र की तृप्ति देसाई भी सबरीमाला मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन केरल पुलिस ने उनको सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। सुनिए इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
कल सुबह 4:30 बजे जब भूम माता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई और उनके 5 साथियों ने बिंदु अमिनी के साथ कोची एयरपोर्ट पहुंचे तो वातावरण शांतिपूर्ण था। पिछले साल जब तृप्ति देसाई ने अपने साथियों के साथ इसी एयरपोर्ट पर उतरी थी तो वो एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि बाहर जाने के हर द्वार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कर दिया था। कल एयरपोर्ट पर पुलिस के साथ बातचीत के बाद ये 7 महिलाएं कोची के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। यहां तक तो वातावरण शांतिपूर्ण था, लेकिन जब बिंदु कार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कागजात लेकर वापस पुलिस के दफ्तर जा रही थी तो एक शख्स ने उन पर मिर्ची का स्प्रे इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद बिंदु के साथ कई पुरुषों ने हूटिंग की और उन्हें बोलने नहीं दिया। इसके बाद बिंदु को पुलिस सरकारी अस्पताल ले गई उनके इलाज के लिए। बहुत घंटों बाद बिंदु ने बीबीसी को बताया, तृप्ति और हमारे साथी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हैं और मैं अस्पताल में हूँ। वहाँ पुलिस और तृप्ति के बीच बातचीत हो रही है। पुलिस हमें यहाँ सुरक्षा दे रही है, लेकिन वो सबरीमला जाने के लिए सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। ये थे बिंदु अमिनी के शब्द। आपको याद दिला दे कि इसी साल 2 जनवरी को बिंदु और कनक दुर्गा दो पहली 50 साल से कम उम्र की महिलाएं थी जो सबरीमला के स्वामी अयप्पा के मंदिर में प्रार्थना कर सकी। पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 और 50 साल की उम्र की महिलाएं भी सबरीमला मंदिर में प्रार्थना कर सकती हैं, क्योंकि भगवान के घर में लिंग भेदभाव नहीं हो सकता है। इसी पर केरला में विरोध प्रदर्शन हो गए और कई महिलाएं पुलिस के सुरक्षा के साथ भी प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि बीजेपी और उसके अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शारीरिक रूप से महिलाओं को रोका था। तृप्ति देसाई ने वापस पुणे जाने से पहले पत्रकारों से कहा,
पुलिस ने कहा कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि अगर हमारे वर्डिक्ट के ऊपर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर अगर स्टे नहीं है, तो मुझे लगता है कि पुलिस ने वहां तक हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। यहाँ के गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकार की बात है, ये किसी धर्म या किसी की भावना दुखाने की बात नहीं है।
तृप्ति देसाई ने यह भी कहा कि पुलिस के कई अफसरों ने उन्हें बताया था कि इस समय भी सबरीमला के रास्ते में हर जगह लोग उन पर हमला कर सकते हैं और वो सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तृप्ति देसाई ने पिछले बार की तरह यही कहा कि वो सबरीमला वापस आने की फिर से कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन बिंदु के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया वो फिर से उस बात को दोहराता है कि महिलाओं के संघर्ष में कितनी किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीएसएनएल प्रमुख पीके पुरवार के मुताबिक कंपनी के 79,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट यानी वीआरएस के लिए आवेदन किया है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल में करीब 1,60,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि वीआरएस के लिए आवेदन देने वाले कर्मचारी कंपनी के दबाव पर ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि बीएसएनएल प्रमुख ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने बात की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से।
देखिए कुलदीप, ये जो खबर है कि बीएसएनएल के जो प्रमुख हैं पीके पुरवर, उनके मुताबिक करीब 79,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया है। बीएसएनएल में करीब 1,60,000 कर्मचारी हैं, तो एक बड़ी संख्या है वहां पर। पिछले कई साल से जो बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति रही है, करीब जो हमारी बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग करीब 20,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है, और जिस तरह के टेलीकॉम सेक्टर की हालत है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो प्राइवेट, उनके ऊपर भारी कर्ज है और वो बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट कर रही हैं, तो बीएसएनएल भी उसी लपेट में आई है। आपको याद होगा फरवरी में जब कुछ सैलरीज डिले हुई थी तो हर जगह हेडलाइंस हुई थी, तो फिर उसके बाद से सरकार से गुहार लगाई गई, क्योंकि बीएसएनएल के में लोगों का कहना था कि हमारे पास ढेर सारी लैंड है, उसको बेचकर ये जो कर्ज है हम अदा कर सकते हैं। काफी बैक एंड फोर्थ होने के बाद सरकार का इंटरवेंशन हुआ है, और तो उसी दौरान ये खबर आई है। और क्योंकि बीएसएनएल में जो शिकायत रही अधिकारियों की, जो वरिष्ठ अधिकारी की, बहुत बड़ी संख्या है जो उनके पास स्किल्स की प्रॉब्लम है, और प्लस जिस तरह का खर्चा होता है वो एक बड़ा मेजर चंक बीएसएनएल में सैलरीज में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। उसी को लिहाज में रखते हुए कुछ था कि जो लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो वीआरएस लें। हालांकि जो कर्मचारी हैं, एक दो जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनकी सैलरी डिले हो रही हैं, लेकिन जो सीएमडी हैं बीएसएनएल के पीके पुरवर, उनका कहना था कि ऐसा नहीं है और बीएसएनएल एक पीएसयू है यहाँ, जहाँ ऐसी चीजें नहीं है, और ये तथ्यहीन आरोप हैं जो कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टियां लगा रही हैं।
जी, और ये जो एक नई स्कीम है जिसके तहत कर्मचारी वीआरएस ले सकते हैं, इस स्कीम के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है?
तो रिपोर्टों के अनुसार ये 3 दिसंबर तक लागू रहेगी, और बीएसएनएल इस स्कीम की मदद से करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद कर रही है, और 50 साल या उससे ऊपर के कर्मचारी वीआरएस ले सकते हैं, और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस स्कीम को लें। ब्रॉडली मोटा मोटा यही है कि आप वीआरएस लें और इससे बीएसएनएल की जो वेज बिल्स पर जो एक प्रेशर है उस पर कमी आएगी।
ये थे विनीत खरे, और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और हमारे साथी विकास त्रिवेदी तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी विकास, बताएं अखबार क्या कहते हैं आज के?
इकबाल जी, दिल्ली से छपने वाले सभी अखबारों के पहले पन्ने पर बीते कुछ दिनों की ही तरह आज भी महाराष्ट्र की ही खबरें हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है बीजेपी इज महाप्लान अनरेवल्स, यानी बीजेपी का जो महाप्लान था वो उधड़ कर रह गया। जी, हिंदुस्तान हिंदी का शीर्षक है कि महाराष्ट्र की महाभारत में बाजी पलटी, नीचे दो तस्वीरें हैं, एक देवेंद्र फडणवीस की तब की तस्वीर है जब वो शपथ लेने के लिए गए थे सुबह सुबह
23 तारीख की सुबह 8 बजे,
और दूसरी राज्यपाल को इस्तीफा देते हुए अखबार इसी इन दोनों तस्वीरों के नीचे लिखता है कि वही जगह वही लोग लेकिन तीन दिन में बदल गया मिलने का मकसद। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है ओवर टू महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। इकोनॉमिक टाइम्स में आर प्रसाद का कार्टून जो है वो इसी पर है जिसमें चाणक्य की छवि से एक बच्चा कह रहा है कि आपके आधुनिक अवतार आपको अर्थशास्त्र में भी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि चाणक्य से बहुत रिलेट करके लोग देख रहे हैं। तो द टेलीग्राफ अखबार जो कि कोलकाता से छपता है, तो उसका ई पेपर हमने देखा था, तो उसमें अमित शाह की तस्वीर लगा रखी है और दूसरी तरफ चाणक्य की तस्वीर है। अमित शाह की तस्वीर के ऊपर लिखा है ये चाणक्य नहीं है, और चाणक्य की तस्वीर के ऊपर लिखा है ये चाणक्य है। इंडियन एक्सप्रेस की जो मेन हेडिंग है फ्रंट पेज की, उनकी हेडिंग है कि आफ्टर डार्क नाइट कॉन्स्टिट्यूशन डे, कल संविधान दिवस भी था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। हेडिंग को लेकर बहुत सारे अखबारों ने अलग अलग तरीके से प्ले किया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग है कि पावर प्ले उद्धव इन, फडणवीस आउट और अजीत रिटायर हर्ट। सामना अखबार बीते कुछ दिनों से देख रहे थे तो उसमें वो आक्रामक रुख था, लेकिन जब अब ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो सामना के पहले पन्ने का शीर्षक है वचनपूर्ण, बाला साहब का सपना पूरा हुआ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र से इतर बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में ही खबर है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अब अयोध्या मामला में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा। जी, जनसत्ता के पहले पन्ने की खबर है कि भारत में रिश्वतखोरी के मामले में 10% की गिरावट आई है। इसकी ये खबर कई अखबारों में है और ये लिखते हैं कि भारत में लगभग हर दूसरा जो भारतीय है वो रिश्वत देता है। ये रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी,
कमी कैसे आई है,
वो रिश्वत देता है मतलब इस, फिर भी जो दूसरा
मामला
जी उसमें कमी आई है, पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो हर दूसरा भारतीय दे रहा है, लगभग 51% लोगों ने रिश्वत दी है, हालांकि 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना रिश्वत दिए अपना काम निकलवाया है। हिंदुस्तान अखबार की खबर है कि खुद से गर्भपात की दवा लेने के 98% मामले जानलेवा साबित हो सकते हैं। अखबार ने रिपोर्ट दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की रिसर्च के हवाले से छापी है। द ट्रिब्यून की खबर है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा के तीन साल के जो कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अखबार की दूसरी खबर पीएम मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्त है कि अपने कर्तव्यों पर फोकस किया जाए। इसके अलावा अमर उजाला की एक खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश है कि पुलिस उर्दू फारसी के शब्दों में नहीं साधारण भाषा में करे दर्ज FIR, जो जैसे शब्द होते हैं कठिन से उसको लेकर ही है ये।
बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस समय एक सवाल राजनीतिक फिजाओं में तैर रहा है और वो है कि क्या प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार देशद्रोह के मामले में अभियुक्त परवेज मुशर्रफ को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चल रहे देशद्रोह मामले में फैसला देने के लिए विशेष अदालत ने 28 नवंबर यानी कल की तारीख तय की थी, लेकिन अब इमरान खान की सरकार ने कोर्ट में अर्जी देकर फैसला न देने की दरखास्त की है। BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने इस्लामाबाद में मौजूद BBC उर्दू के संवाददाता आजम खान से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि है क्या ये पूरा मामला।
मामला शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ बना था प्राइम मिनिस्टर 2013 में, तो उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ट्रीजन ट्रायल की मंजूरी दी थी और ये कहा था कि उनके अगेंस्ट एक स्पेशल कोर्ट बना के उनको ट्राई किया जाए। तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो लगे थे November 3, 2007 को, उन्होंने एक इमरजेंसी रूल मुल्क में नाफिज किया था, उसको न पार्लियामेंट ने कंडोन किया था न कुछ और लेजिस्लेशन उसके ऊपर कोई इसको कवर मिला था, लीगल कवर मिला था। 99 का जो कू था उसको तो 17 अमेंडमेंट हो गई थी, पार्लियामेंट ने कंडोन कर दिया था, तो इस वजह से वो ट्रायल नहीं किया गया, लेकिन 2007 की बुनियाद के ऊपर किया गया था, इमरजेंसी रूल लगाया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया। उस बुनियाद के ऊपर ये ट्रीजन ट्रायल शुरू हुआ, 6 साल तक ये चलता रहा। दरमियान में नवाज शरीफ की और मिलिट्री की आपस में काफ़ी अनबन हो गई थी, तो ये ट्रायल रुक गया था। 2-3 साल तक ये डोरमेंट रहा, कोर्ट फंक्शन ही नहीं कर रही थी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान इनिशियल तो ये कह रहा था कि मुशर्रफ का ट्रायल भी हम पहुंचाएंगे, बट इन्होंने आते ही जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसको डिसॉल्व कर दिया और वहाँ पे लॉयर्स जो उन्होंने देने थे वो नहीं दिए गवर्नमेंट ने, और एक तरह से इसको कोशिश की कि ये ट्रायल खत्म हो जाए। कोर्ट आसिफ खोसा ने कोर्ट को कहा कि आप डिसाइड करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट हो गई जो स्पेशल कोर्ट है, کسی بھی ہائی کورٹ کا جو سینئر جج ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور دو جو ججز ہوتے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ سے ہی ہوتے ہیں، تین ججز کی یہ اسپیشل کورٹ ہوتی ہے. تو اس کو کہا کہ آپ مشرف کو ٹائم دیں اگر نہیں آتا، ڈفرینٹ آپشن رکھے کورٹ نے. تو آخر میں یہ ہوا کہ نہ وہ خود آیا نہ اس کے لائر نے اس کو ریپرزینٹ کیا. تو ون سائڈڈلی پھر کورٹ نے کہا کہ ایویڈینس تو کمپلیٹ ہے آن دی سائڈ آف پروسیکیوشن، تو ہم اس کو 28 نومبر کو اب ڈیسائڈ کر دیں گے آئیدر وے. اس کے چند گھنٹے پہلے اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشنر گیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی حکومت خود چلی گئی ہے کہ یہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی، کنسٹیٹیوشن آف جو اسپیشل کورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مشرف کو موقع دینا چاہیے، یہ ٹرائل ٹھیک سے شروع نہیں ہوا. اب وہ ریلیف ہمیں یہ دیں گے 28 نومبر کو وہ فیصلہ کوئی بھی نہ دے خصوصی عدالت جو ہے.
تو جو عمران خان سرکار کا جو رخ ہے اس کو لے کر کے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ اچانک سے ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ وہ پرویز مشرف کو بچانے کے لیے آگے آ رہے ہیں؟
اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اس وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ہیں. وہ مشرف کے کافی قریبی ساتھی رہے آرمی میں، اور مشرف کے کہنے پہ وہ کافی زیادہ کچھ سیاسی اسائنمنٹس بھی کرتے تھے، پھر آئی ایس آئی میں بھی انہوں نے سرو کیا، آئی بی کے بھی وہ سربراہ رہے. تو اس طرح ان کی جو انٹیریئر منسٹر کے طور پہ اپوائنٹمنٹ تھی وہ خود بھی سگنیفیکنٹ تھی. تو اس کیس میں جو مشرف کے خلاف ٹریزن ٹرائل ہے، یہ پاکستان کا آرٹیکل 6 ہے جس میں کہا گیا کہ جو کوئی بھی آئین کو توڑے گا اس کو ایبینس میں رکھے گا، ایکسٹرا جو کنسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کی سزا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ہم نے ان سے بات بھی کی کہ کیا آپ کی قریبی دوستی ہے مشرف کے ساتھ، آپ اس وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ اس میں اٹارنی جنرل بھی ہے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی ہیں، تو یہ ہم سب کا ایک فیصلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو انصاف نہیں مل رہا، مشرف کو انصاف ملنا چاہیے.
یہ تھے بی بی سی اردو کے سنواد داتا اسلام آباد سے اعظم خان.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں جیوتکا سنگھ، اور آج سب سے پہلے بات کشتی کی کرتے ہیں. بھارت نے چین کے تائجنگ شہر میں سماپت ہوئی ایشیائی انڈر 15 کشتی چیمپئن شپ کے تیسرے اور انتم دن بھی اپنا شاندار پردرشن جاری رکھتے ہوئے 5 سورن اور اتنے ہی رجت پدک جیت کر کل 28 پدکوں کے ساتھ چیمپئن شپ کا سماپن کیا. بھارت کے 28 پدکوں میں 13 سورن پدکوں کے علاوہ 14 رجت اور 1 کانسے پدک شامل ہے. کیڈٹ وشو چیمپئن شپ کے کانسے پدک وجیتا دیپک چہل کے نیتریتو میں بھارت نے پرتیوگتا کے انتم دن فری اسٹائل میں 4 اور سورن اپنے نام کیے. ان میں دیپک نے 75 کلو گرام میں، وشال نے 62 کلو گرام میں، ساگر جاگلان نے 68 کلو گرام میں اور جتن نے 85 کلو گرام بھار ورگ میں سورن اپنے نام کیے. اور اب چلتے ہیں ہاکی کی اور. 2020 ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہاکی ٹیم کس گروپ میں کھیلے گی یہ طے ہو گیا ہے. بھارت کو 2016 میں اولمپک گولڈ جیتنے والے ارجنٹینا کے ساتھ پول اے میں رکھا گیا ہے. میزبان جاپان کے علاوہ آسٹریلیا، اسپین، نیوزی لینڈ بھی اسی پول میں ہے. پول بی میں بیلجیم، نیدرلینڈز، جرمنی، گریٹ بریٹین، کناڈا اور ساؤتھ افریقہ کو جگہ ملی ہے. بھارت اس سمے ورلڈ رینکنگ میں 5ویں استھان پر ہے. اسی مہینے بھونیشور میں بھارت نے روس کو 11-3 کے انتر سے ہرا کر اولمپک کے لیے کوالیفائی بھی کیا تھا. کھیل سماچاروں میں آج اتنا ہی.
اور اب پرمکھ سماچار.
بی بی سی سماچار. مہاراشٹر میں ایک مہینے سے جاری سیاسی سسپنس اب ختم ہو گیا ہے. شیوسینا پرمکھ ادھو ٹھاکرے 28 نومبر کی شام ممبئی کے شیواجی پارک اسٹیڈیم سے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری پد کی شپتھ لیں گے. امریکی سنسد کی نیائک کمیٹی نے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی لیگل ٹیم کو اگلے 3 ہفتوں تک مہابھیوگ کی سنوائیوں میں حصہ لینے کے لیے کہا ہے. اس کمیٹی کے پرمکھ جیرالڈ نڈلر نے وائٹ ہاؤس سے کہا ہے کہ رویوار تک یہ جواب دیا جائے کہ کیا ٹرمپ کی لیگل ٹیم یا خود ٹرمپ سنوائی کے لیے آ سکیں گے. افغانستان کے راشٹرپتی اشرف غانی نے اپنی ہی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کی آلوچنا کی ہے. این ڈی ایس نے سینکڑوں بچوں کے ساتھ یون اتپیڑن کی خبر کو سامنے لانے والے 2 ایکٹیوسٹ کو حراست میں لیا تھا. مالٹا سرکار سے 2 منتریوں اور پردھان منتری کے چیف آف اسٹاف نے 2017 میں پترکار دفینی کروانا گلیچا کی ہتیا کی جانچ سے جڑے معاملے کو لے کر استعفیٰ دیا ہے. بی بی سی سماچار.
तो नमस्कार भारत की ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी कपिल देव सिंह ने, लेकिन आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।